दूसरा ऐसा कोई इलाज नहीं है। क्योंकि भागवत माने एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है भक्त भागवत। भक्त लोग जानते हैं ये कैसे किसी को प्रेम करना चाहिए, ये प्रेम दिखलाने के लिए ही, प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही भागवत है। इस प्रकार के गोपियों ने अपनी लोक लज्जा पापी बात धारण सब कुछ छोड़ कर दे। कृष्ण ने कहा कि नंगी हो जाओ तो नंगी भी हो गई कृष्ण के लिए, और बुरा नहीं माना, सब कुछ उन्होंने किया कृष्ण के लिए। ऐसा जगत में कोई उदाहरण नहीं है, विश्व के किसी भी साहित्य में या भारत के भी श्रीमद भागवत के अतिरिक्त किसी साहित्य में नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन सफल होगा यदि हम इस मनुष्य जीवन में केवल एकमात्र कर्तव्य करें, कुछ हो चाहे न हो, जीवन तो निर्वाह करना ही पड़ेगा। व्यवसाय से, वाणिज्य से, खेती बाड़ी से, किसी भी प्रकार से जीवन का निर्वाह तो करना पड़ेगा, किंतु निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। देखो एक उदाहरण के साथ में इसको बता रहा हूं। एक भारतवर्ष में काश्मीर देश है, यहाँ पर भारत का भूस्वर्ग कहलाता है, बहुत अद्भुत देश है। वहां के लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, वहां पर एक बड़े सारे विद्वान थे जो सर्वदर्शन न्याय वेदांत सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया था, और सरस्वती देवी की आराधना की थी उन्होंने। सरस्वती का भक्त है कि तुमको कोई पराजय नहीं कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है, संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लेगा जो तुमको पराजित कर देगा, और तुम हमारी बाणी ही सरस्वती, तुम्हारी बाणी के ऊपर में सरस्वती बैठेगी। जब वो सब कुछ कर दिया तो वो विजय करने के लिए भारतवर्ष में काशी, वाराणसी, दक्षिण काशी, बरम, मिथिला इत्यादि सब देशों में जाकर के बड़े बड़े पंडितों को हराया। अब केवल बंगाल उसका विजय करना बाकी रहा। यदि नवदीप में बड़े बड़े पंडित हैं, वहां पर इतने संस्कृत की विद्यालय थे उस समय में, महापुरुष के समय में, जो कम से कम तो 1 लाख या 2 लाख तो अध्यापक थे। तो छात्र कितने होंगे विद्यालय, विद्यालय में कितने विद्यालय कितने होंगे, वहां पर नत्याध्याय इत्यादि की पढ़ाई होती थी, और विद्या का केंद्र माना जाता वो ऊंट गाड़ियों में, गाड़ियों में वेद मंत्र शास्त्र सब लाद कर, और बड़े बड़े अपने शिष्यों के साथ में नवदीप में पधारा। यदि नवदीप के पंडितों को वो पराजित कर देगा तो विश्व का दिग्विजय पंडित बन जाएगा। इसलिए प्रतिष्ठा के लिए वो इन सब चीजों को लेकर के आया नवदीप में। नवदीप का दृश्य देख करके वो सदा आरम गया, कितना सुंदर रमणीय नवदीप है, नौ धाम उसमें है। उसने चैलेंज दिया, नवदीप के अंदर बहुत से विद्वान लोग है, कोई भी विद्वान यदि माई का लाल हो तो हमसे शास्त्रार्थ कर ले, और नहीं तो जय पत्री लिख करके हमारे हाथों में दे दे। वहां के पंडितों में बड़ी खल बनी लग गई, क्या किया जाए। उन्होंने कहा जाकर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए। वो ब्रह्मास्त्र क्या, वो बीमारी पड़ने के साथ 12-14 वर्ष का लड़का, बचपन से बड़ा विद्वान और व्याकरण शास्त्र पढ़ाता था बच्चों को, उसकी पाठशाला ने 20-25 वर्ष के छात्र पढ़ते, और उसकी उम्र 16 वर्ष या उससे कम की, और वो पढ़ाता था। वो वहां के जितने पंडित हैं ना को दम लगा दिया था, न्याय की ऐसी खांसी और तर्क और जुम्मन हम तुम्हारे इस चैलेंज को ग्रहण करते हैं, किंतु उससे पहले हम लोग का एक शास्त्र निमाई पंडित है, पहले उसे तुम साक्षात कर लो, पराजित कर लो, तब फिर हमसे आए, तब हम तुमसे करेंगे। सोचा ये बड़ाई क्या है निमाई पंडित के ऊपर में, जो हम लोग को बड़ा तंग करता है, तो ठीक है पहले उसी से हो जाए, इसके बाद में यदि उससे हार गया तो बस विजय हमारी, और यदि नहीं हारा तो हम जयपत्र पीछे लिखेंगे और पहले से हम लिखेंगे। इसलिए ऐसा सोच करके उन्होंने कहा चले जाओ, एक निमाई पंडित छोटा सा बच्चा है, हमारा पाठशाला का छात्र है, चले जाओ उसके पास। सोचा जो सच्चा की निमाई पंडित छोटा सा 16 वर्ष का बच्चा हमसे साक्षात क्या करेगा, चले तो देखे तो देख कहता है सांप को बड़ी बड़ी लंबी पाग बांधी, अपने साथ अपने शिष्यों को दिया और कहां मिलेगा वो सांप को गंगा के तट पर मिलेगा, और वो उस समय में अपने बच्चों को व्याकरण सिखलाता है और उनको नव्य नैतिक तर्क इत्यादि शब्द मिल जाता है, संस्कृत में ही बातचीत करता है। सब लोग लेकर के गंगा के तट पर पहुंचा, उसमें सूर्य अस्त हो रहे थे, उनकी लाल लाल किरणें गंगा को मानो केसर से लाल कर दिया हो, उसमें तरंगे उठ रही है, और चैतन्य महाप्रभु समय छोटे से बच्चे निमाई पंडित अपने व्याकरण के छात्रों को लेकर के और वहां गंगा नदी के सुशीतल तट पर बालू के रेती के ऊपर में बैठेंगे और उनसे तरह तरह से प्रश्न कर रहे हैं संस्कृत में और लोग उत्तर दे रहे हैं, इस तरह से उनको पढ़ा रहे हैं। इतने में वो पंडित वहां पर उपस्थित था, वो भी देखा कि संस्कृत में सभी बातचीत कर रहे हैं और बड़े सुंदर उसमें ये बातचीत कर रहे हैं और न्याय की बातें हो रही हैं, व्याकरण की बातें हो रही हैं, तो वो बैठ गया अपने बच्चों के साथ, उसको देख करके बच्चों को बड़ा सरकारी ये तो केशव काश्मीरी है, बड़ा विद्वान जिसकी विवाह पर सरस्वती जी के आजमान निमाई पंडित के कानों में कहा ये बड़ा भारी दिल्ली है पंडित पंडित है, न जाने क्यों आपकी है यहाँ पर इस सभा में आया, अच्छा ठीक है। महापुरुष जी जब वो आकर के बैठ गया और इनका वार्तालाप सुनने लगा तो महापुरुष जी ने बड़ी नम्रता के साथ में उनसे कहा आप तो बड़े सुरंधर पंडित, हमने सुना है आप काश में देश के रहने वाले, आपकी विवाह पर सरस्वती बात करती है, तो मैं विद्वानों का आदर करता हूँ, मैं विद्वान तो नहीं मैं साधारण का छात्र हूँ, अभी गंगा नदी के सामने ऊपर में सूरज चमक रहे हैं, उनकी लाल लाल किरणें गंगा जी में पड़ रही है, अब थोड़ा सा गंगा जी का महात्मा तो वर्णन करें, तुम कथिकार से तुम समझोगे, अरे तुम तो केवल व्याकरण जानते हो, साहित्य ये तो शिशु शास्त्र है, तुम सब कुछ जानते नहीं कैसे समझोगे, मुझे अच्छा लगता है इसलिए आप गंगा की महिमा का वर्णन करें। उन्होंने 24 मिनट के अंदर में नए नए अलंकार अनुप्राण इत्यादि से युक्त 100 श्लोक एकदम आंधी की तरह को बोल, जितने बच्चे और जितने वहां पर लोग थे वे आश्चर्यचकित रह गए, देखा गए और साथ में देख रहा है ये इनके मुखों पर कैसा भाव हो रहा है, देखा कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और गर्व से वो बोल करके वो चुप हो गया। महापुरुष ने कहा वास्तव में आप बड़े सुरंदर विद्वान, मैं चाहता हूं कि इसमें किसी एक श्लोक का आप अर्थ आप समझाइए। मैंने कहा कि तुम समझोगे थोड़े, मैंने नहीं समझेंगे जरा सुनेंगे तो उसने कहा कि कौन सा श्लोक का अर्थ बतलाऊ, उसने सोचा कि मैं तो बहुत जल्दी जल्दी आंधी की भांति इतने श्लोकों को भूल गया इसको याद नहीं होगा कोई श्लोक। इसलिए पूछा कि इसमें से जो मैंने कहा कौन सा श्लोक का अर्थ सुनना चाहते हो और उसका दोष और गुण समझना चाहते हो। जब एक सेकंड में वह काफी साथ महाप्रभु जी निराय पंडित एक बीच से गंगाया गंगाया महिमा इत्यादि एक श्लोक बीच से उसको सुना वो आपसे से अरे बीच से नया श्लोक हमने बनाया और ये कह सका तो हमको भी तो याद नहीं और ये ऐसा सुंदर श्लोक सुना दिया तुमने कैसे ये बताया। यदि किसी ने किसी के बल से यदि वो एक मिनट में इतना श्लोक बना सकता है तो उन्हीं की कृपा से कोई सुविधा भी तो हो सकता है। वो दंग रह गया। महाप्रभु जी ने कहा कि आप इसके दोष और गुणों को व्याकरण की दृष्टि से छंद की दृष्टि से साहित्य की दृष्टि से अलंकार और अनुपात की दृष्टि से इसमें क्या गुण और दोष है बतलाइए। तो उसने कहा विशेष अवतार रचनाओं में श्लोकों में कोई दोष नहीं होता केवल गुण ही गुण होते हैं कोई दोष नहीं होता है। महाप्रभु जी निनाई पंडित बोले यदि आप आदेश करें तो मैं इसके कुछ गोल दोषों का मैं वर्णन करूं चकित होकर के ये हमारे साहित्य में हमारे श्लोकों में कैसे ये दोष भूल सकता है क्यों बुरे ही गुण है। उन्होंने पांच पहले दोष दिखलाए महाप्रभु जी अरे आपने तो बहुत सुंदर श्लोक किया किंतु आपने इसमें भवानी भक्ता क्यों लिख दिया। भवानी भक्ता मैंने क्या होता है गंगाया महिमा में गंगा की महिमा बोलते हुए ये शंकर जी के जटा में गंगा जी निपटी गई कितने वर्षों तक उनको धारण कर रखे कौन भवानी भक्ता अर्थात शंकर जी गंगा की महिमा में जिसके चयनित भगवान के चरणों से निकली हुई है गंगा जी में जिसने जरी इसने गंगा का स्मरण की भी करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा ये उसका अर्थ था। तो उसमें मैंने भवानी भक्ता शब्द लिखा। महाप्रभु जी ने कहा निमाई पड़ी अरे आपने ये क्या कर दिया आपने चौपट कर दिया। भवानी माने होता है भव भव माने शंकर और उनकी इतनी भवानी होती है और फिर उसका भक्ता का मैं समझ होता है कि उसकी दूसरा कोई पति है। भवानी माने भव की स्त्री शंकर जी की पत्नी है कौन उमा या पार्वती है और फिर उस भवानी का पति तो उसका पति कौन पति से अतिरिक्त उसका और कोई पति है
शंकर पर छोड़ कर
तो कभी ये शंकर पर छोड़ करके तब वो तो पति बता रही नहीं तो आपने देखिए चौपट कर दिया। ऐसे ऐसे ही उसने पांच दोष महाप्रभु जी ने निकला उसका मुख सूख गया कोई उत्तर नहीं दे रहा और फिर उसमें से चार गुण जो उसके दिमाग में ही नहीं था वो उसने चार गुण बदलाया। यद्यपि आपने समझा नहीं तो भी इसमें से बड़े सुंदर सुंदर अर्थ निकले हैं और उनको भी उन्होंने मिला अब तो उसका मुख सूख गया मुख नीचे हो गया आज तक बड़े बड़े विद्वान उसके सामने नहीं सीख सके। आज एक छोटा सा युवा एक छोटा सा लड़का तो और उसको परास्त कर दिया ग्लानी आई और महाप्रभु के जो सेवक थे ताली बजा करके हंसना आरम्भ किया। महाप्रभु जी ने किया मत करो विद्वान आदमी का निराकर नहीं करने से और उनसे बोले आप बहुत व्यवहार में दी गई समझी आज आप स्वस्थ हो गए हैं तब फिर हम लोग मिलेंगे और आके मुझसे मैं ऐसे ही लोग सुनेगा आप पढ़ाइए और उनको सत्सम्मान दिया किंतु उनका पैर ही नहीं चल रहा था मुंह सूख गया और मन ही मन ने सोचा कि हाय हाय मैं पराजित हुआ तो एक छोटे से व्याकरण के एक छात्र से मैं हार गया घर पहुंचा, घर पहुंचे हर किसी को नहीं, अपने कैंप में पहुंचा और सरस्वती का ध्यान लगाया और कहा कि सरस्वती देवी, आप हमको वरदान दिया था कि कहीं नहीं हारूंगा, कोई तुमको नहीं हरा सकेगा, और यदि हरवाया तो एक ऐसे शिशु छात्र से, व्याकरण के छात्र से हमारा हरा दिया, मुझे आप मरने के लिए कोई जगह दिए, कहा मैं अपना मुस्कुरा कहा जाऊं कैसे रहूं। उसी समय में सरस्वती जी प्रकट बोले, अरे तुमने जो मेरी आराधना की उसका फल आ जाएगा, इसको छोटा शिशु मत समझो, ये स्वयं कृष्ण है, जगत में करुणा करने के लिए पधारे हैं, आज तुम्हारा उन्होंने दल दूर कर करके हमारी प्रार्थना से तुमको उन्होंने ऐसा किया है, तुम कोई चिंता मत करो, चले जाओ, वो हमारे पति हैं, हम उनके पास ले जाओ, उनके चरणों में भिक्षा करो, ये तुमको तुम्हारी रक्षा करें, विजय का याद जथा सफल है वो तुमको बताएंगे। सवेरे एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में महापुरुष के घर के पास में गया और महाप्रभु के चरणों में एकदम सत्तम गंगा के प्रवेश हो अपनी पगड़ी खोल करके उनके चरणों में दे दी। अब मैं आपको समझा गया, आप कौन है यथार्थ में, आप हमारे सरस्वती देवी आराध्या देवी के पति हैं, मेरा कल्याण कैसे हुआ, मैंने आपके चरण में अपराध किया। निमाई पति बोले, देखो विद्या का तात्पर्य सर्प नहीं, सर्प से कोई कल्याण नहीं हो सकता, विद्या और ज्ञान जय कृष्ण पाप पद में यदि कर विद्या वही है जिसके द्वारा कृष्ण के चरण में भक्ति, जिसके अतिरिक्त विद्या वह नहीं है जिसमें अभिमान आ जाता है, जो संसार को कुछ नहीं समझता अपने जैसा विद्वान, उसमें उसका चीज बहुत ऊंचा रहता है, अभिमान आ जाता है, विद्या का अभिमान प्रतिष्ठा की पूर्ण होती है, ये विद्या विद्या है। विद्या सदा की विनय, विद्या क्या देती है विनय, क्यों गिना जाता है, हम भगवान के सुचरण हैं, कब आ जाएंगे कोई चीज नहीं, हमें कृष्ण भक्ति तरी भी नहीं है, ये कृष्ण भक्ति कैसे हमारे अंदर में आएगी, इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, इस मनुष्य जीवन में आकर भगवान के चरणों में यदि भक्ति नहीं हुई तो हमारा जीवन विफल हो गया। इसीलिए स्वयं कभी कभी कृष्ण और कभी कभी उनके अंश कला या अवतार लोग जगत में आदि थे, इसलिए जन्म जन्मांतरों से अनादि काल से जीव खुला हुआ है, हम लोग शरीर नहीं है, इस अंदर में आत्मा इसी को समझो, भगवान को भूलने की वजह से ही हमारी ये दुर्दशा हो रही है, इसलिए कृष्ण कभी कभी रामचंद्र के रूप में, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी कुछ रूप में जगत में उतर, इसलिए भूले भटके जीवों को हमारा कल्याण करने के लिए कभी कभी साधु संतों को भी भेज देते हैं और ये साधु संतों को हमारे लिए बता करके इस सत्य को बतलाते हैं। देखो भाई मनुष्य जीवन का एक ही मात्र कर्तव्य है, अपने को समझो कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, इनके क्या संबंध है, तुम जो अभी जो कर रहे हो पुत्र परिवारिक और संसार का काम ये सब सुपर कर रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह से समझ करके जीवन का निर्वाह करके किसी प्रकार से सत्संग लाभ करके भगवान का भजन करो, यही समस्त शास्त्रों का सार है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दी और वो अपने अवकाश में बहुत दीन होकर के अपनी विद्या का अभिमान छोड़ करके मथुरा में गया और वहां पर कृष्ण का भजन कर। इसी तरह से विद्या का ये फल है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बड़ी बड़ी मनोहर लीलाएं करते हैं, जगाई बधाई वो कैसे उद्धार की आप तो जानते हैं। एक समय अभी पितृ छात्र शायद चल रहा है कि समाप्त हो गया, अभी चल रहा है, माता पिता का पिंड देना चाहिए। महाप्रभु गए गया में पिंड देने के, साधु मैंने क्या सभा देखना ना, किसी भी देश में जगत में नहीं है जो अपने पितरों को कोई सभा दिखलाए, उनको दिली नहीं है मेरे बाप कौन से, उनको पता नहीं कि देशों विदेशों में भारत वर्ष में भी आज आ रहा है। अभी कानून पास होगा कि अपने पिता का नाम पूछने की जरूरत नहीं है, यदि पिता का नाम पूछा तो केस होगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से देश भारत वर्ष में धीरे धीरे आ रही है देशी देश, तो हम लोग के यहाँ यात्रा थी, हमारा अभी भी सूर्य वंश चल रहा है, चंद्रवंश चल रहा है, और वंश भीमू भागवत्र भागवत चल रहा है। अभी हम जानते हैं नाम और गोत्र से पीड़ित इत्यादि देते हैं और उनको उद्धार करने की चेष्टा, तो ये भाग के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। महाप्रभु इसलिए गए गया नहीं, कहा है क्या वह गदाधर जी का आप पक्ष है। गदाधर मैंने क्या, गदाधरी से या गदाधर भगवान कौन है, गद मैंने होता है बोलने वाला, कृष्ण के हाथ में गद अर्थात बहुत शब्द करने वाली बंसी है, इसलिए उनका नाम है गदाधर। और दूसरा अर्थ भी है गदा को धारण करना, किंतु मूल अर्थ है बंसी को धारण, जो गद बड़ी मधुर से सबको आकर्षित कर लेती है, उनका नाम गदाधर। तो वहां पर गए, उनका चरण पद्म है, जो उनको प्रणाम करता है उनकी पूजा करता है उनका माया दूर हो जाता है, सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाते हैं। और वहीं पर लोग अपने पिंडों को अपने पितृ पुत्रों को भी पिंड देते हैं। वहां गए, जब वो गदाधर जी के मंदिर में गए, ईश्वर पूरी साध नामा उनके परिजनों से मिलती है, दिन भर रात भर भगवान चिंतन करते रहते थे, उनको अपने शरीर का होश नहीं, वैष्णव के उत्तम वैष्णव के जो लक्षण है सब उनमें लक्षण थे, सभी हंसते सभी रोते सभी जमीन सब को रोकने लगते। इस प्रकार से उनको दे सके चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हमारा पिंड देना सार्थक हो गया, पिंड आप देने की जरूरत नहीं। पितृ पुरुषों का पिंड देने से जिसको पिंड देते हैं उसी का उद्धार होता है, विभिन्न उद्धार क्या जन्म मरण से नहीं, कुछ राहत से मिलती है, दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे दूध भात को ऊपर से छाट दो और पानी दे दो तो क्या होगा, पीपल का दरख्त यदि पेड़ होगा वृक्ष कहीं इधर उधर लग जाएगा, ऊपर से काट दो तो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, उसकी जड़ें बांटी जाएंगी, महत्व भी गिरा देगा जब तक जड़ न उठाओ। तो जब तक भगवत भजन से उसकी जड़ में शक्ति माया की, तब से पितृपुरुषों को आत्मसमर्पण कर दिया, आप मुझे कृष्ण भक्ति का रस चीजें काम करें, हमारा जीवन इसी विचार है। तो पिंड लेने से तो एक व्यक्ति का ही कुछ उद्धार होता है और वो भी संपूर्ण रूप में उद्धार नहीं होता, किंतु वैष्णव संतों के सत्संग से कोटि कोटि स्त्रियों का उद्धार हो जाता है। एक ही नहीं, अपने घर के चार लोगों का, कोटि कोटि स्त्री लोगों का उद्धार हो जाता है। एक वैष्णव का यदि संग हो गया तो क्या करता है, भक्ति लता का बीज दे देता है। भक्ति लता का बीज किसको कहते हैं? आम का वृक्ष एक भूखली होती है, उसमें आम के जितने भी पेड़ है, डालियां हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, कितना वर्ष जिएगा, वो सब की पोटेंसी उस भूखली में होती है। उसको लगा दो, पानी दो, विराट वृक्ष हो जाएगा, उसमें बड़े बड़े जैसा उसमें भूखली का फल हो जाएगा, पानी का ऐसा ही मीठा उसमें से स्वाद आम का है। यदि तुम नीम का बीज बोते हो तो आम की आम का पेड़ मिलेगा, बीज की बुद्धि रहेगी, बीज होगा, ऐसा ही होगा। तो ये गुरु वैष्णव लोग क्या करते हैं, भक्ति लता का बीज। वो भी क्या है, वो भी है कृष्ण सेवा की वासना। साधु वही है जो किसी को व्यक्ति को भगवान के चरण में लगा दे और ये बतलाए कि तुम्हारा कल्याण भज और भगवत भजन से ही होगा, भगवान की सेवा करने से होगा। वो बीज दे दिया भगवान की सेवा। उसका वाणी लक्षण क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं, कृष्ण की भक्ति करने से हमारा जीवन का संपूर्ण कार्य करना हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, इसको कहते हैं इसको कहते हैं श्रद्धा। इसको फिर से समझिए, कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जीवन का सब कुछ करना हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। ये जब कृष्ण सेवा की वासना हृदय में जगती है तो ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तब अपने गुरु में, शास्त्रों में, संतों में, भगवान के वचनों में संपूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है। कैसा विश्वास हो जाता है, खंड खंड यदि कोई जाए के प्राण तो अपने हम बदल ना सकें। हरिदास ठाकुर को चर्चा थी, प्रहलाद महाराज को चर्चा थी, खंड खंड यदि हमारा शरीर हो जाएगा, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब ऐसी श्रद्धा हो जाए तो समझो ये श्रद्धा हुई, वो दिन सुनत गया है ना। अन्यथा यदि ऐसी भावना नहीं हुई, एक किसी का लड़का था, लड़के को रोग हो गया, उसकी मैया बड़ी रोने लगी, हाय प्रभु आप हमारे बच्चे को बचा दिया, मैं आपकी भक्ति करूंगी, आपके लिए सर्वस्व दूंगी, किंतु किसी कारण से बच्चा का प्रारंभ रूप नहीं देता था, अपने कर्मों का फल उन्हें भोगना था, उसकी मृत्यु हो गई। अपने घर में लड्डू को बालते, ठाकुर जी के सबको लेकर के और गंगा जमुना में या कभी जगह जा करके सत्य ये क्या हुआ, उसके बाप जिंदा है, उसके बाप पितामह जिंदा है, संसार में कोई जिंदा रहता है, अपने कर्म संसार में तो मरना है, अब इसके लिए भी भगवान को छोड़ दिया तो ये श्रद्धा कारण भी ऐसी श्रद्धा श्रद्धा नहीं है। इसलिए ऐसी श्रद्धा करो, प्राण जाए बल वचन मिल जाए, भगवान का वचन किसी भी स्थिति में नहीं छूटेगा। जिसका सांझा सदाचार के करें किंतु भगवत भजन के लिए अपने शरीर की रक्षा करें, ऐसी भावना हो, यही समस्त शास्त्रों का आधार है। आज ही पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार के बंधनों को और संसार के वस्तुओं को पिता माता मानू भाई मंदिर के उत्तर परिवार राज्य सबको मल के समान हो गए आए बंदे निरंतर लेके निरंतर परिणाम करते भगवान का चिंतन करते यहाँ तक कि सबका निष्ठा रुचि आसक्ति ये सबको पार कर रहे और पार करके अब पहुंचने वाले के भावावस्था में रसी अप्राप्त होने की अनंत एकदम संपूर्ण रूप से तो नहीं किंतु हाँ एक तरह से संपूर्ण रूप से दूर रूप से कुछ गर्व हो सकते वही करते करते एक दिन एक नदी के किनारे सुखी थी सुखी घाट से थी बहुत चिंतन कर रहे थे इतने में पास में पड़े लोग के गर्जन की आंख भी देखा एक किरणी इनके पास ही बिल्कुल ले जा रही थी नदी के किनारे बड़ी सुंदर सुंदर घाट है जब पास निकट में आकर के गर्जन की और उसके ऊपर में चुनने वाला था पापन करने वाला था उसी समय वो भी कुछ पड़ी और सभी को मलांग लगाई वो गर्जी थी ये छलांग लगाए जोर से तो नदी के बीच में छलांग लगाते उन्होंने उसके घर से वो प्रसव हो और प्रसन्न होने से वो तो घर के लिए कुछ बात है और श्रीकृष्ण ने उनके नेत्रों से अपने बेटे की तरह से निहार हमारा बेटा हमारा अभी नहीं दिया कोई भी रक्षा सभी की भावना चाहे पशु हो पक्षी हो पतंग हो प्रति ऊपर ऊपर हो अपने प्राण बड़े से आ रहे हैं अपने बच्चों का प्राण अपने से लिए तो वो ऋषि ने उसके तरफ में हमारे बेटे को कोई रक्षा कर ऋषि ने उसकी आंखों को पड़ी आंखों में आंखें नहीं वो जानबूझ कर दी है उन्हीं के तरफ से देखी अभी कुछ भजन करता है आज हमारा बच्चा मर जाएगा सब कुछ है वो देखा कि तो उसका बड़े बेटा नदी में गिर रहा है पड़ा रहा है और डूब रहा है झट अपनी बहन की जोड़ी रख दी और बच्चे का जरूर कर दिया और उसकी रक्षा करने के लिए नदी में उतर गए और उसकी बिरणी के बच्चे को उठा उठा करके बड़े प्यार से अपने आश्रम में लाए तो उसकी तो रक्षा करना पड़ेगा भैया को है दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी दूध की किसी तरह की गैया की जाती है द्वारा उसकी जरूरत है और वो दिन गुना रात को गुना पढ़ने लग गया माता के गर्भ की जरूरत है कि बड़े सामने में लग गया वो अभी जो भी अपनी भैया को पढ़ गया क्योंकि प्राण की गति है जब ये आसन पर बैठे अपने सिर से सिर तो अभी नहीं खुली है ऐसे खुल रहा है मुझे कब से आता है और खुद करके उनकी गोदी में बैठ गया ये संभालने लगते कि घर में हरिणाम करते हैं तो हरिणाम थोड़े होता है हरिणाम करने के लिए नीचे में रख गया और जब ये लंगूर के आने में हो गया ताकि कहो ये कृष्ण का आरंभ है क्या ये होते हैं यहाँ पर दिव्य स्थान बन जाता है हो जाता है इसके जन्म लेने से यहाँ हम लोग उतार हो गई कुछ भी वसुंधरा देवी का अर्थ हो गई और इस प्रकार के समय लग गए थोड़ी देर के बाद कुछ दिनों में इतनी आसक्ति बढ़ गई कि वो यहाँ बैठ के माला फेंकने के लिए बस वहीं आ जाता बस उसके लाल से आ जाता है और जब वो विश्राम करने लगा तो उसी की चिंता न करते भगवान का भजन हो गया बहुत धीरे धीरे बस माला ध्यान का किरण का ध्यान हो गए और उसी बीच में किसी मृत्यु आई जब मृत्यु आई उसमें पहले वो मृत्यु के साथ में मृत्यु के साथ में उनके दल में देखा कि हमारे दल के लोग हैं बस उनसे उसका खान का हुआ बस उनके साथ निकल करके चला गया फिर लौटा की अलग मृत्यु आई के लिए कहा गया इसे जानवर ने कहा गया कि आप बाल लौटा है तेज रावण के लिए करते 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 मृत्यु तो आई पशु जी की चिंता करते 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 पशु प्राण को हम समय में किसी चिंता होती है बस वैसा ही जन्म होता है जीवन पर वो सोचा यह है कि ये यदि खेल की चिंता करते करते जीवन हो गए और उसी समय में कोई भगवत चिंतन करे चिंतन करते करते गोपियों की चिंता करे और कृष्ण की चिंता करे नंद बाबा जसोदा की चिंता करे आपने कृष्ण की चिंता करे कि ये लोग किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे हैं विशेष करके गोपियों का चिंतन करे ये गोपियां कृष्ण को इस प्रकार से सेवा कर रही हैं तो मरने पर उसको क्या होता यदि वो जीवन मर गए तो हो गया या उनके पत्र क्यों नहीं हो जाए इस चीज को अच्छे तरह से समझो इसे मरते समय में वही चीज कारण से जो सारा जीवन काम तुमने किया इसे क्यों नहीं पहले से ही अपने को सुधारो तो समझ का परिणाम होकर के करेंगे किसी को अस्पताल में ले जाए।